एकत्र ज्ञानोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञानोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है पर अक्सर गलतफहमियों और डर से घिरा रहता है।
हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया।
बिल्कुल।
और इसके लिए हमने क्रिस्टोफर फ्रिथ और ईव जॉनस्टोन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब चुनी है, स्किज़ोफ्रेनिया। ये किताब हमें इस जटिल मानसिक स्थिति को, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया को, समझने का एक नया नज़रिया देती है, वैज्ञानिक भी और मानवीय भी।
और ये विषय आज भी उतना ही ज़रूरी है, शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं, जो कलंक है, खासकर हमारे समाज में, वो आज भी बहुत गहरा है।
सही कहा।
तो एक साफ समझ शायद हमें थोड़ी ज़्यादा सहानुभूति और बेहतर देखभाल की तरफ ले जा सकती है।
हाँ, बिल्कुल। और ये किताब यही दिखाती है कि भाई विज्ञान कैसे इन मुश्किल हालातों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ये सिर्फ लक्षणों के एक लिस्ट नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये जानने की कोशिश है कि दिमाग और मन के स्तर पर आखिर चल क्या रहा है।
तो चलिए पहले इन कमाल के लेखकों से मिलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। क्रिस्टोफर फ्रिथ, ये एक जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं।
हाँ, ब्रेन इमेजिंग में इनका बहुत काम है, FMRI, पेट स्कैन्स।
बिल्कुल, इन तकनीकों के इस्तेमाल में ये अग्रणी माने जाते हैं।
पर इनकी असली खासियत मुझे लगता है ये है कि ये सिर्फ दिमाग की तस्वीरों तक नहीं रुकते, ये स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे लोगों के अंदरूनी अनुभव को समझने पर जोर देते हैं।
अच्छा, मतलब जो वो महसूस कर रहे हैं वैसा क्यों महसूस कर रहे हैं।
एग्जैक्टली। इस किताब के जो मुख्य संज्ञानात्मक मॉडल हैं वो फ्रिथ ने ही दिए हैं। वो एक तरह से चेतना के जासूस हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब काम कैसे करता है।
दिलचस्प। और दूसरी तरफ हैं ईव जॉनस्टोन।
हाँ, प्रोफेसर ईव जॉनस्टोन एडिनबरो यूनिवर्सिटी में साइकाइट्री की प्रोफेसर रही हैं, बहुत अनुभवी क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट और रिसर्चर। और इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के बायोलॉजिकल आधार को, मतलब जैविक आधार को, समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
अच्छा, जैसे
उनका जो नॉर्थविक पार्क स्टडी था वो एक मील का पत्थर माना जाता है। उसमें पहली बार CT स्कैन का इस्तेमाल करके दिखाया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोगों के दिमाग की बनावट में कुछ फर्क होते हैं। जैसे दिमाग के अंदर के खाली हिस्से, वेंट्रिकल्स, वो थोड़े बड़े हो सकते हैं। इस स्टडी ने पक्के तौर पर ये साबित करने में मदद की कि ये सिर्फ मन का वहम नहीं, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, दिमाग से जुड़ी स्थिति है।
तो इन दोनों का साथ आना ही इस किताब को खास बनाता है ना? फ्रिथ मन का मॉडल दे रहे हैं।
हाँ, सैद्धांतिक ढांचा।
और जॉनस्टोन उसे मस्तिष्क के ठोस सबूतों से जोड़ रही हैं।
बिल्कुल,
मन और मस्तिष्क का संगम। तो फिर ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, मतलब इसका सार क्या है?
आसान शब्दों में कहें तो ये स्किज़ोफ्रेनिया को गहराई से समझने की एक कोशिश है। ये इसे सिर्फ लक्षणों का एक गुच्छा नहीं मानती, बल्कि दिमाग के सोचने समझने के सिस्टम में, उसकी जो संज्ञानात्मक मशीनरी है, उसमें आई एक गड़बड़ी के तौर पर देखती है।
और ये किताब सिर्फ डॉक्टरों या साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो इस हालत के बारे में वैज्ञानिक रूप से जानना चाहता है, समझना चाहता है और शायद थोड़ी हमदर्दी महसूस करना चाहता है।
चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, या परिवार का कोई सदस्य हो, या बस कोई भी जिज्ञासु इंसान।
बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया असल में अपनी चेतना, अपनी पहचान, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरों के मन की बात समझने की जो क्षमता होती है, थ्योरी ऑफ माइंड।
हाँ, थ्योरी ऑफ माइंड,
उससे जुड़ा हुआ विकार है। ये केमिकल लोचा जैसी जो सिंपल व्याख्याएं हैं ना।
हाँ, जो आमतौर पर सुनने को मिलती हैं।
हाँ, उनसे बहुत आगे जाती है। ये एक ज्यादा डिटेल्ड संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस का फ्रेमवर्क देती है।
मतलब किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि जो लक्षण हमें बहुत अजीब लगते हैं, जैसे वो आवाजें सुनाई देना,
हेल्यूसिनेशंस,
या ये लगना कि कोई बाहरी ताकत हमें कंट्रोल कर रही है,
पैसिविटी फिनोमेना जिसे कहते हैं,
हाँ, तो ये लक्षण असल में दिमाग के खास सिस्टम, सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम के ठीक से काम ना करने की वजह से हो सकते हैं।
बिल्कुल, यही सिस्टम है जो सामान्य रूप से हमें बताता है कि हमारे विचार और काम हमारे अपने हैं, बाहर से नहीं आए।
अच्छा।
और साथ ही जो नेगेटिव लक्षण है, जैसे किसी काम में मन न लगना, समाज से कट जाना या सोचने में बिखराव,
हाँ, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं,
हाँ, उन्हें ये मेटाकॉग्निशन या फिर वही थ्योरी ऑफ माइंड की कमी से जोड़ती है, मतलब दूसरों के इरादों, उनकी सोच को समझने की क्षमता में कमी आना।
तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के सफर में।
जरूर।
शुरुआत होती है स्किज़ोफ्रेनिया की अवधारणा के इतिहास से
जी
कैसे समझा गया इसे वक्त के साथ?
हम बहुत संक्षिप्त में, जैसे पहले एमिल क्रिपेलिन थे, उन्होंने इसे डिमेंशिया प्रिकॉक्स कहा, मतलब जवानी में होने वाला मनोभ्रंश। उनका ध्यान लंबी गिरावट पर था।
ओके।
फिर आए यूजीन ब्लुइलर, उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया शब्द दिया। और यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है।
कौन सी?
कि इसका मतलब टूटा हुआ व्यक्तित्व या स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं।
अच्छा,
ये तो बहुत लोग मानते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है।
ब्लुइलर का मतलब था मन का विभाजन, स्प्लिट माइंड।
मन का विभाजन कैसे?
मतलब सोच, भावना और दुनिया को समझने की क्षमता, ये जो दिमागी प्रक्रियाएं हैं, वो एक दूसरे से और असलियत से जैसे कट सी जाती हैं।
हाँ।
अलग थलग हो जाती हैं।
ये दिखाता है कि इसे परिभाषित करना भी हमेशा से मुश्किल रहा है।
बिल्कुल। इसके बाद किताब लक्षणों की पहचान कराती है। उन्हें मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा गया है।
ठीक है।
पहला, पॉजिटिव लक्षण। ये वो अनुभव हैं जो सामान्य जीवन में जुड़ जाते हैं।
अच्छा।
मतलब जो आमतौर पर नहीं होते।
जैसे?
जैसे मति भ्रम या हेलुसिनेशंस, ऐसी चीजें देखना या सुनना जो है नहीं। खासकर आवाजें सुनना बहुत कॉमन है।
हाँ, सुना है।
या फिर भ्रम या डिल्यूजन्स, ऐसे पक्के यकीन जो असलियत से मेल नहीं खाते, जैसे शक करना कि कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या खुद को बहुत बड़ा समझना। और सोच या बातचीत में बिखराव भी इसी में आता है।
ओके।
ये हुए पॉजिटिव लक्षण।
और दूसरे?
दूसरे हैं नेगेटिव लक्षण। ये वो है जहां सामान्य कामकाज में कमी आ जाती है।
कमी
मतलब?
मतलब
जैसे बात करने की इच्छा कम हो जाना, एलोजिया, किसी काम को शुरू करने या पूरा करने का जज्बा ना होना, एवोल्यूशन, चीजों में खुशी महसूस ना कर पाना, एनहेडोनिया।
अच्छा।
और चेहरे या आवाज से भावनाओं का पता न चलना, जिसे अफेक्टिव फ्लैटनिंग कहते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये लक्षण अक्सर पॉजिटिव लक्षणों से ज्यादा परेशान करने वाले और लंबे समय तक टिकने वाले हो सकते हैं।
ये बात जरूरी है। और तीसरी श्रेणी?
तीसरी श्रेणी है संज्ञानात्मक लक्षण। इसमें याददाश्त, ध्यान लगाने और प्लानिंग करने जैसी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनमें कमी आना शामिल है।
तो ये सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं है?
नहीं, ये बीमारी के मूल लक्षण माने जाते हैं, उसके कोर का हिस्सा है।
समझ गया। अब आता है किताब का वो हिस्सा जो आपने कहा था बहुत दिलचस्प है, व्यक्ति परक अनुभव।
हाँ, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। यहाँ फ्रिथ हमें मरीज की नजर से दुनिया देखने की कोशिश कराते हैं। ये कहने के बजाय जी ये तो पागलपन है, वो सवाल उठाते हैं कि भाई दिमाग में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है कि इंसान को लगने लगे कि उसके अपने हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं है।
हाँ, या उसके विचार उसके अपने नहीं है, कोई डाल रहा है या निकाल रहा है, ये सब।
बिल्कुल। यहीं पर उन अनुभवों की बात होती है जहां लगता है कि कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, पैसिविटी फिनोमेना, या विचार डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। किताब कहती है कि ये अजीब लगने वाले अनुभव ही शायद उस अंदरूनी गड़बड़ी को समझने की चाबी हैं।
तो ये सिर्फ लक्षण नहीं, ये सुराग हैं।
हाँ, एक तरह से सुराग है जो हमें अंदरूनी मैकेनिज्म की तरफ इशारा करते हैं। और यहीं से किताब अपने मुख्य संज्ञानात्मक मॉडल्स पर आती है। पहला है सेल्फ मॉनिटरिंग की विफलता।
ओके, सेल्फ मॉनिटरिंग।
हाँ, ये पॉजिटिव लक्षणों को समझने में मदद करता है। देखिए, सामान्य रूप से जब हम कुछ करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरा दिमाग एक सिग्नल भेजता है, एक तरह की कॉपी जो मुझे बताती है कि ये आवाज मेरी है। एक इंटरनल टैग लग जाता है, मेड बाय मी।
अच्छा, तो ये एक अंदरूनी पहचान का सिस्टम है कि ये काम मैंने किया है।
बिल्कुल। अब सोचिए अगर ये टैगिंग सिस्टम गड़बड़ा जाए। फ्रिथ का मॉडल कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा हो सकता है।
तो क्या होता है फिर?
तो जब व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार आता है, उस पर ये मेरा विचार है वाला टैग ठीक से नहीं लग पाता। नतीजा, वो विचार ऐसा लगता है जैसे बाहर से आया हो,
जैसे कोई और बोल रहा हो।
हाँ, यानी एक आवाज सुनाई देती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन।
अरे वाह। और इसी तरह अगर कोई अपना हाथ हिलाने का फैसला करे लेकिन दिमाग ये सिग्नल ना दे पाए कि ये फैसला मेरा था, मैंने शुरू किया है,
तो उसे लगेगा कि कोई बाहरी ताकत उसका हाथ हिलवा रही है।
ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब एक ही सिद्धांत से इतने सारे अजीब अनुभव समझ में आने लगते हैं।
हाँ, ये वाकई सोचने का एक नया तरीका देता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। दूसरा मुख्य संज्ञानात्मक मॉडल है थ्योरी ऑफ माइंड की विफलता।
ओके, थ्योरी ऑफ माइंड, ये क्या है?
ये सामाजिक दिक्कतों और शक, मतलब पैरानोया को समझने में मदद करता है। थ्योरी ऑफ माइंड हमारी वो काबिलियत है जिससे हम दूसरों के इरादों, उनकी सोच, उनकी भावनाओं का अंदाजा लगाते हैं।
अच्छा, जैसे ये समझना कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो वो शायद खुश है, या अगर कोई तेज आवाज में बात कर रहा है तो वो शायद गुस्से में है।
हाँ, बिल्कुल वही, दूसरों के मेंटल स्टेट्स को समझना। स्किज़ोफ्रेनिया में ये काबिलियत कमजोर पड़ सकती है।
तो उसका नतीजा क्या होता है?
तो अगर कोई इंसान दूसरों के इरादों को ठीक से पढ़ नहीं पाता तो हो सकता है वो किसी के न्यूट्रल या दोस्ताना व्यवहार को भी शक की नजर से देखे। उसे लगे कि सामने वाला शायद उसके खिलाफ है।
और इससे पैरानोया या व्यामोह पैदा होता है।
हाँ, और दूसरों के मन की बात न समझ पाने की वजह से सामाजिक मेलजोल बहुत मुश्किल और कन्फ्यूजिंग हो जाता है, जिससे अकेलापन और नेगेटिव लक्षण जैसे समाज से कटना बढ़ सकते हैं।
तो ये दोनों मॉडल, सेल्फ मॉनिटरिंग और थ्योरी ऑफ माइंड, ये मिलकर लक्षणों की एक बड़ी रेंज को समझाते हैं।
बिल्कुल, एक पॉजिटिव लक्षणों को, दूसरा नेगेटिव और सामाजिक लक्षणों को। इसके बाद किताब फोकस करती है स्किज़ोफ्रेनिया में मस्तिष्क पर।
हाँ, यहाँ ईव जॉनस्टोन का काम आता है।
एग्जैक्टली, यहाँ दिमाग में होने वाले असल बदलावों के सबूत दिए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि दिमाग की बनावट में हल्के लेकिन अहम बदलाव हो सकते हैं, जैसे वो वेंट्रिकल्स का थोड़ा बड़ा होना।
हाँ, जो आपने नॉर्थविक पार्क स्टडी में बताया था।
हाँ, या दिमाग का कुल वॉल्यूम थोड़ा कम होना। ये सूक्ष्म बदलाव है।
और फंक्शनल लेवल पे, मतलब काम करने के तरीके में,
फंक्शनल इमेजिंग जैसे fMRI या पेट स्कैन दिखाते हैं कि दिमाग के कुछ हिस्सों में एक्टिविटी का पैटर्न बदला हुआ होता है। खासकर दिमाग के आगे वाला हिस्सा फ्रंटल लोब, साइड वाला हिस्सा टेम्पोरल लोब, और उन नेटवर्क्स में जो सेल्फ मॉनिटरिंग और सामाजिक समझ, सोशल कॉग्निशन के लिए जरूरी हैं। तो ये सिर्फ सोच की गड़बड़ी नहीं, ये दिमाग के काम करने के तरीके में आया बदलाव है जिसे हम अब देख सकते हैं।
ये मन और मस्तिष्क को वाकई जोड़ता है। फिर बात आती है कारणों की, causes.
Yes.
इसका कारण क्या है?
किताब साफ करती है कि इसका कोई एक कारण नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल है।
अच्छा।
जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का रोल है, लेकिन कोई एक स्किज़ोफ्रेनिया जीन नहीं मिला है।
तो
ऐसा लगता है कि कई सारे जीन्स मिलकर थोड़ा थोड़ा जोखिम बढ़ाते हैं, वो वल्नरेबिलिटी पैदा करते हैं।
और माहौल, एनवायरनमेंट,
माहौल भी बहुत जरूरी है। जैसे माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या जन्म के समय कोई दिक्कतें आई हों, या फिर टीनेज में भांग यानी कैनबिस का ज्यादा इस्तेमाल, ये सब जोखिम बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अहम थ्योरी है न्यूरो डेवलपमेंटल परिकल्पना।
न्यूरो डेवलपमेंटल, हाँ, मतलब दिमाग के विकास से जुड़ी।
हाँ, इसका मानना है कि दिमाग के विकास में शायद जन्म से पहले या बचपन में ही कोई हल्की सी गड़बड़ी हो जाती है। ये गड़बड़ी सालों तक शांत रहती है, पता नहीं चलता।
और फिर
टीनेज या जवानी में जब दिमाग पूरी तरह मच्योर हो रहा होता है, तब शायद स्ट्रेस या किसी और वजह से लक्षण सामने आते हैं।
अच्छा, तो जड़ें बहुत पहले की हो सकती हैं।
हाँ, यही ये परिकल्पना कहती है। और आखिर में किताब इलाज और मैनेजमेंट पे बात करती है।
ट्रीटमेंट,
हाँ, एंटीसाइकोटिक दवाएं जरूरी हैं, जो खासतौर पर डोपामीन नाम के केमिकल के रिसेप्टर्स पर असर करती हैं, D2 रिसेप्टर्स। लेकिन किताब मनोवैज्ञानिक इलाज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज पर भी बहुत जोर देती है, खासकर साइकोसिस के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBTP।
CBTP ये कैसे काम करती है?
हाँ, और CBTP सीधे उन संज्ञानात्मक मॉडल्स पर काम करती हैं जिनकी हमने बात की, जैसे सेल्फ मॉनिटरिंग या थ्योरी ऑफ माइंड वाली दिक्कतें।
अच्छा।
ये लोगों को उनके परेशान करने वाले विचारों जैसे शक या भ्रम की जांच करने, उन्हें चुनौती देने में मदद करती है, और आवाजें सुनने जैसे अनुभवों से निपटने के तरीके, कोपिंग स्ट्रेटजी सीखने में मदद करती है।
तो ये सिर्फ दवा नहीं बल्कि सोच पर भी काम करती है।
बिल्कुल, किताब कहती है कि सबसे अच्छा तरीका है मिला जुला इलाज, दवा, थेरेपी, परिवार का साथ और समाज का सपोर्ट, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच।
तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं, की टेकअवेज?
मेरे लिए पहला ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया असल में अपनी पहचान, अपने स्व को महसूस करने का विकार है, कोर में।
हाँ, ये बात कि इंसान अपने ही विचारों और कामों को अपना नहीं मान पाता, ये सोचना ही कितना अजीब है।
बिल्कुल। दूसरा, ये किताब मन और मस्तिष्क के बीच का फासला कम करती है। ये दिखाती है कि कैसे सेल्फ मॉनिटरिंग में गड़बड़ी जैसी मनोवैज्ञानिक बात दिमाग के सर्किट में होने वाली असल एक्टिविटी से जुड़ी है।
हाँ, जिसे हम स्कैन में देख सकते हैं। ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं है।
नहीं, तीसरा जो बेतुका लगता है उसमें भी एक तर्क छिपा हो सकता है।
जैसे?
जैसे भ्रम या डिल्यूजन, उन्हें सिर्फ पागलपन नहीं माना जाता बल्कि उन्हें इंसान के अपने बेहद अजीब और समझ न आने वाले अंदरूनी अनुभवों को समझाने की एक कोशिश, एक तरह के रैशनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखा जाता है।
ये नजरिया कितना मानवीय है, मतलब मरीज की कोशिश को सम्मान देना।
हाँ, चौथा सामाजिक दिमाग का टूटना। वो थ्योरी ऑफ माइंड में कमी ये समझाती है कि क्यों लोग समाज से कट जाते हैं या शक करते हैं। ये दिखाता है कि हम इंसान कितने सामाजिक प्राणी हैं
और ये बीमारी कैसे हमारे दूसरों से जुड़ने के तरीके पर ही हमला करती है।
बिल्कुल। पांचवां, न्यूरोडेवलपमेंटल परिकल्पना की अहमियत। ये बीमारी अचानक नहीं आती, इसकी जड़ें दिमाग के शुरुआती विकास में होती हैं। ये हमें रोकथाम और जल्दी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। छठा, ये सिर्फ डोपामीन की कहानी से आगे जाती है। ये एक पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल देती है जिसमें जीन्स, माहौल, दिमाग का विकास, सोचने समझने की दिक्कतें सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। कोई एक आसान जवाब नहीं है।
सही। और शायद सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो ये कि समझ से ही इलाज और करुणा पैदा होती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
जब हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि क्या हो रहा है तो कलंक कम होता है, डर कम होता है और बेहतर इलाज के रास्ते खुलते हैं। भारत जैसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुप्पी और शर्म बहुत ज्यादा है, ये समझ और सहानुभूति तो और भी जरूरी हो जाती है।
बिल्कुल सही। किताब में सीधे कोट करने लायक पंक्तियां शायद न मिले, पर कुछ मुख्य विचारों को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहला सेल्फ मॉनिटरिंग वाला विचार।
हाँ,
कि आवाजें सुनना या ये लगना कि कोई बाहरी ताकत कंट्रोल कर रही है, ये शायद असलियत परखने की क्षमता का फेल होना नहीं बल्कि दिमाग के अपने टैगिंग सिस्टम का फेल होना है। दिमाग अपने ही विचारों और कामों को पहचान नहीं पा रहा, इसलिए उन्हें बाहर का समझ रहा है।
ये सोचे बदल देता है।
हाँ।
दूसरा, भ्रम की व्याख्या पर।
हाँ, कि अजीब और पक्के यकीन, भ्रम शायद बिना सिर पैर की बातें नहीं है। हो सकता है ये उस इंसान की सबसे अच्छी कोशिश हो अपने उन अंदरूनी अनुभवों को समझने की जो बेहद अजीब और डरावने हैं।
यह हमें सिखाता है कि अनुभव को खारिज करने से पहले समझने की कोशिश करें।
बिल्कुल। तीसरा, मन मस्तिष्क कनेक्शन पर। हम अब शायद एक लकीर खींच सकते हैं मरीज के शक करने वाले विचारों से लेकर दिमाग के उन हिस्सों की बदली हुई एक्टिविटी तक जो दूसरों के इरादों को समझने के लिए जिम्मेदार हैं।
ये दिखाता है कि मन की बातें दिमाग की वायरिंग से कैसे जुड़ी हैं।
और चौथा, सामाजिक दिक्कतों पर। स्किज़ोफ्रेनिया शायद इंसान को सिर्फ उसके अपने मन से ही नहीं बल्कि दूसरों के मन को समझने की क्षमता से भी दूर कर देता है। गहरा अकेलापन सिर्फ मर्जी की बात नहीं, ये एक ऐसी दुनिया में रहने का नतीजा हो सकता है जो समझ से बाहर और डरावनी लगने लगी है।
यह अकेलेपन के पीछे की वजह बताता है। ये बातें बहुत गहरी हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
देखिए, डॉक्टरों और थेरेपिस्टों के लिए ये समझ इलाज को बेहतर बना सकती है। अगर वो समझें कि भ्रम शायद मरीज की अपनी स्थिति को समझने की कोशिश है, तो एक बेहतर चिकित्सीय रिश्ता बन सकता है। CBT जैसी थेरेपी सीधे इन दिक्कतों पर काम कर सकती है।
और परिवार वालों और देखभाल करने वालों के लिए, उनके लिए क्या है इसमें?
उनके लिए ये समझ बहुत जरूरी है। ये जानने से कि उनका अपना प्रियजन शायद जानबूझकर अजीब व्यवहार नहीं कर रहा बल्कि उसके दिमाग में असल दिक्कत है, आलोचना और गुस्सा कम हो सकता है।
हाँ, वो एक्सप्रेस्ड इमोशन वाली बात जो रिकवरी के लिए बुरा माना जाता है।
बिल्कुल। ये समझ उससे बचा सकती है। ये जानना कि वो शायद सामाजिक इशारे नहीं समझ पा रहे हैं, बातचीत में धैर्य रखने में मदद कर सकता है। मोटिवेशन की कमी को आलस न समझना। और खुद उन व्यक्तियों के लिए जो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे हैं,
उनके लिए अपने अनुभवों की एक वैज्ञानिक वजह जानना, एक एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत राहत दे सकता है, वैलिडेटिंग हो सकता है।
हाँ, इससे शायद खुद को दोष देने की भावना कम हो सकती है।
बिल्कुल।
ये सोचना कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे दिमाग में एक खास तरह की मुश्किल है, ये बहुत हिम्मत दे सकता है और इलाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
और समाज और पॉलिसी बनाने वालों के लिए?
उनके लिए ये किताब कलंक से लड़ने का एक जरिया है। इसे एक दिमागी बीमारी के तौर पर समझना भेदभाव कम कर सकता है और बेहतर सेवाओं, बेहतर रिसोर्सेज की मांग बढ़ा सकता है। और वो न्यूरो डेवलपमेंटल मॉडल हमें सिखाता है कि बचपन और किशोरावस्था में ध्यान देना कितना जरूरी है। शायद बेहतर मैटरनल केयर, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, नशे के जोखिम कम करना, ये सब भविष्य में मदद कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन।
सही कहा। तो अंत में इस किताब से या इस चर्चा से आपके लिए सबसे चौंकाने वाली या महत्वपूर्ण बात क्या रही?
मेरे लिए इस सब में सबसे स्ट्राइकिंग बात ये थी कि कैसे भ्रम, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल बेतुके लगते हैं, वो असल में इंसान के अपने अंदरूनी उथल पुथल को समझने की एक कोशिश हो सकते हैं, एक तरह का लॉजिक। ये चीज़ पूरी स्थिति को बहुत मानवीय बना देती है, डर की जगह सहानुभूति पैदा करती है।
हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि हमारी अपनी पहचान, ये एहसास कि मैं हूँ, मेरे विचार मेरे हैं, मेरे काम मेरे हैं, ये कितना नाजुक है और दिमाग इसे कितनी मेहनत से लगातार बनाता रहता है।
हाँ, ये कोई दी हुई चीज नहीं है।
नहीं, और स्किज़ोफ्रेनिया हमें दिखाता है कि जब ये बनाने की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है तो क्या हो सकता है। ये सिर्फ मानसिक नहीं, ये गहराई से न्यूरोबायोलॉजिकल है, और ये हमें अपनी सामान्य चेतना की कद्र करना भी सिखाता है, जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ।
अगर हमारी पहचान, हमारा स्व का एहसास दिमाग की एक लगातार चलने वाली रचना है, और ये रचना स्किज़ोफ्रेनिया जैसी स्थितियों में टूट सकती है, तो ये चीज हमें चेतना की प्रकृति और खुद स्व के बारे में क्या सिखाती है?
सोचने वाली बात है।
इस पर विचार किया जा सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।